नमस्कार, ओला, आदाब, सत श्री अकाल, अलोहा, जय जिनेन्द्र, बोंजोर एंड हेलो, मेरे नन्हे एवं बड़े दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर पॉडकास्ट कहानी पे, जहां आपकी दोस्त और होस्ट प्राची लेके आई है आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही सुंदर कहानी। दोस्तों, आप में से बहुत लोग शायद चिन्मय कुमार घोष, जिन्हें श्री चिन्मय के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में जानते होंगे, जो कि एक भारतीय आध्यात्मिक लीडर रहे हुए हैं और उन्होंने मेडिटेशन भी सिखाना शुरू किया था न्यूयॉर्क में। 1931 में वो एक ईस्ट बंगाल के छोटे से गांव शाखपुरा में पैदा हुए थे। 11-12 साल की उम्र में ही उन्हें बहुत अंदरूनी अनुभूतियाँ होने लग गई थी और ध्यान के क्षेत्र में वो बहुत ही विकसित हो चुके थे। 1964 में वो न्यूयॉर्क सिटी में मूव हो गए थे। वो ये समझ गए थे कि जो हर एक इंसान के अंदर उदासी है, जो एक तड़प है सुप्रीम पावर को जानने की, वो आगे गहराई में डुबकी लगाते चली जाती है और यही एक ताकत है सारे दुनिया के कल्चर, रिलीजन, साइंस सबको, जो एक तरफ खींचती जाती है। उन्होंने कभी भी अपना ज्ञान, मेडिटेशन और लर्निंग को शेयर करने में किसी से कभी कोई पैसे नहीं लिए थे। श्री चिन्मय की लिखी हुई कहानी, उनकी किताब गोपाल्स इटर्नल ब्रदर एंड अदर स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, जिसका इंग्लिश टाइटल है हु इज़ द हाईएस्ट, आज मैं यहाँ सुनाने वाली हूँ हिंदी में उसका अनुवाद करके। सर्वोच्च कौन? लेखक श्री चिन्मय। एक बार एक बहुत ही धार्मिक और निष्ठावान ब्राह्मण था। वो अपने पुश्तैनी धार्मिक भगवान के प्रति बहुत ही बड़ा भक्त था। दिन रात बड़ी लगन से वह इस भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर श्रद्धा से अपने पूजा पाठ और ध्यान लगाकर बैठा रहते थे। एक दिन ध्यान में मगन थे जब वो ये ब्राह्मण, तो एक आवाज से उनका एकाग्रपना टूटा। उन्होंने देखा कि एक चूहा वहां पे आकर, जो प्रसाद का भोग वहां पे उन्होंने अपने भगवान को चढ़ाया था, उसे बड़े मजे से बिना किसी डर के खा रहा है। ब्राह्मण बहुत ही अचंभित हुआ और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अवश्य ही ये चूहा सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि इस चूहे की ताकत इस भगवान को, जिसको मैं दिन रात पूजता हूँ, उससे ज्यादा ही होगी, वरना वो भगवान के प्रसाद को कभी निडर होकर ऐसे खा नहीं पाता। इसी सोच से विवश होकर ब्राह्मण ने उस चूहे को पकड़ लिया और एक धागे से उसे बांधकर उस शिला पर उस मूर्ति की जगह स्थापित कर दिया। अब से वह चूहे की पूजा करने लगे और उसी का ध्यान लगाने लगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन ब्राह्मण के यहाँ जो एक बिल्ली आती थी, उसने देखा कि यह चूहा तो बड़े ही आराम से वहाँ पे बैठा रहता है, बहुत ही आसान सा शिकार है। मौका पाते ही उसने चूहे को दबोच लिया। चूहे ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, परंतु वह असफल रहा और बिल्ली की जीत हुई। यह देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि चूहे में बिल्ली जितना ताकत तो नहीं है। बिल्ली उस पे हावी हुई, इसलिए अवश्य ही इस बिल्ली की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये उससे ज्यादा ताकतवर है। अब चूहे को हटाकर ब्राह्मण ने बिल्ली को वहां पर बांध दिया। दिन रात उसकी पूजा और ध्यान करने लगे। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। ब्राह्मण के पास एक कुत्ता भी था। उस कुत्ते ने जब देखा कि इस बिल्ली को तो आजकल कुछ ज्यादा ही भाव मिल रहा है, दिन रात मालिक मेरा उसी के साथ रहता है, तो उसने बिल्ली को खदेड़ने का सोचा। अपने खूंखार रूप में आके आक्रोश में उसने बिल्ली पर आक्रमण कर दिया। बिल्ली बेचारी अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, पर कुत्ता उस पर हावी था और वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। यह सब देखकर ब्राह्मण को अब यकीन हो गया कि इस बिल्ली से भी ज्यादा ताकतवर तो यह कुत्ता है, और ब्राह्मण की भक्ति और पूजा का हकदार असली में यह कुत्ता ही है। ब्राह्मण ने उस कुत्ते को मंदिर के पत्थर पर विराजमान कर दिया बिल्ली को हटाकर, और उसे एक रस्सी से वहां बांध दिया। सुबह शाम अब वह उस कुत्ते की गुणगान करने लगा और उसी की पूजा और आरती में लग गया। कुत्ता एक ही जगह बंधे बंधे तंग हो जाता था और उसका भौंकना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उसकी इस हरकत से ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज़्यादा तिलमिला गई एक दिन, और रुष्ट होकर उसने कुत्ते पर एक ईंट उठा के बहुत ज़ोर से दे मारी। कुत्ते को बहुत ज़ोर से लगी और वह दर्द के मारे पीड़ित होकर सिसकियां भरने लगा। उसकी यह आवाज़ सुनकर ब्राह्मण मंदिर में दौड़ता हुआ आया और उसे यह समझने में देर न लगी कि असली ताकत तो उसकी पत्नी में है, जो आज उसने कुत्ते को धराशायी कर दिया। अब ब्राह्मण यह सोच रहा था कि इतने दिनों तक वह यूं ही जानवरों में भगवान ढूंढ रहा था, जबकि उसकी पत्नी सर्वशक्तिमान निकली। उसने जाकर बड़े प्यार से अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम सर्वशक्तिमान हो और आज से मैं तुम्हारी ही पूजा करना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी को पत्थर पर आके बैठ जाने को कहा और उसके ध्यान में लग गया। यह बात सुनकर उसकी पत्नी हक्का बक्का रह गई, उसकी तो बोलती बंद हो गई। वो एकदम अचंभे में पड़ गई कि आज तक उसने सिर्फ ब्राह्मण की सेवा करी है और एक नौकर की तरह जब कहा तब हाजिर हो गई है वो सारे काम पूर्ण करने के लिए जो ब्राह्मण उसे अभी तक बताता आया है, और अब अचानक वो मेरी पूजा करना चाहते हैं। वो असमंजस में पड़ गई, परंतु उससे विवाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे और कहे ब्राह्मण को अपनी ही पूजा करने देने की इजाज़त दे दी। ब्राह्मण की उपासना और आराधना की हकदार अब उसकी पत्नी बन गई थी। वह अपनी पत्नी की भक्ति भरे शब्दों से प्रशंसा करता और उसकी दिव्य शक्तियों के बारे में उच्चतम शब्दों की माला पिरोकर सुबह शाम गुणगान करता रहता था। इतना लीन था वो अपनी भक्ति में अपने पत्नी के प्रति कि वह उसे रात को भी उठाकर कहता था कि मंदिर में आके मेरे सामने बैठो, मुझे ध्यान लगाना है। यदि वह रसोई में काम कर रही होती या नहाने जाती या कुछ भी कर रही होती तो वह उसे रोक कर कहता, तुरंत मंदिर में आओ, बैठो मेरे सामने, मुझे तुम्हारी पूजा करनी है, और स्वयं आंख बंद करके बैठ जाता। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की पत्नी उसकी इस हरकत से तंग आकर चिल्ला पड़ी। उसने कहा, बंद करो यह स्वांग रचना, बहुत हो गया। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ। वह चिल्ला पड़ा और उसकी आवाज गूंजित हो उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस पांडित्य बुद्धिमता की अवहेलना करने की। अपने पति को इतना क्रोधित देख उसकी पत्नी एकदम घबरा गई और उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू निकलने लगे। खुद की इस असीम शक्ति को देखकर ब्राह्मण को लगा, अरे आखिर में तो मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकला। तब उसने यह कहना शुरू करा, मैं ही भगवान हूं, मैं सर्वोच्च हूं, मैं सब कुछ हूं, और खुद ही की पूजा करने में जुट गया। परंतु ब्राह्मण को यह समझने में ज्यादा दिन नहीं लगे कि वो अपनी ही इच्छाओं का शिकार बन चुका था। उसकी ही आकांक्षाओं ने उसे मजबूर किया था वो सारे काम करने में, जो कि कुछ सही थे या गलत। अब उसे यह समझ आया कि इसका मतलब है कि उसकी इच्छाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली थीं, और उसकी तो ये आदत थी कि शक्तिशाली ऊर्जा को भगवान मानकर उसकी पूजा करना। तो अब उसने अपनी इच्छाओं की पूजा करना शुरू कर दिया, पर बहुत ही जल्द उसने यह भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि इच्छाओं की खुद की कोई शक्ति नहीं थी, परंतु उसकी जो चेतना है, जो 5 इंद्रियां हैं, वह ही इन इच्छाओं का नियंत्रण करती हैं। तो अब उसने अपना सारा ध्यान अपनी 5 इंद्रियों यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा पर लगा दिया। इनका खूब गहन रूप से ध्यान करने और सोच विचार के बाद ब्राह्मण को यह ज्ञान हुआ कि उसका मन है जो इन इंद्रियों को भी काबू करता है, तो सर्वोच्च शक्तिशाली उसका मन होगा। अपने मन और बुद्धिमानी और चित्त की अब ब्राह्मण ने दिन रात ध्यान लगाना शुरू करा। उसे इस बात का अभिमान था अब कि कम से कम उसका ज्ञान उन पशुओं के ऊपर उठकर कुछ ही महीनों में कम से कम अपने चित्त तक तो पहुंच चुका है, परंतु उसके अंतर मन में अभी भी एक असंतुष्टि थी, कुछ अधूरा सा उसे महसूस होता था। तब उसने अपने दिल में झांकना शुरू करा। उसने पाया कि दिल में खूब शांति थी, हर्ष था और समरसता भी थी, परंतु पूर्ण तृप्ति की कमी तो वहां भी थी, उसे यहां भी कुछ खटक रहा था। वह अब भी सर्वशक्तिमान की तलाश में लगा हुआ था और उसने यह मान लिया कि दिल में भी ध्यान लगाना पर्याप्त नहीं है। तब एक दिन ब्राह्मण को अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ और पहली झलक मिलते ही उसे अपनी इस अंतर आत्मा की गहरी दिव्यता का एहसास हुआ। उसने गोता लगा दिया इस आध्यात्मिक सागर में। अपने अंतर आत्मा के सफर में ब्राह्मण बढ़ता चला गया और उसे तब ये समझ आया कि एक अकेली आत्मा जो अब उसे जिसका ज्ञान हुआ है, वह भी सब कुछ संतुष्ट करने वाली और सब जानने वाली नहीं है। और गहराई में जाता गया वह ब्राह्मण और खुद की अंतर्मन के सागर में उसने सुप्रीम सेल्फ, जो कि परम सत्य है, उसको पा लिया। वह परम सत्य जो कि एक दिव्य ध्वनि है, जो हम सब के अंदर मौजूद है और जिससे जुड़ना ही हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। तब जाके ब्राह्मण को एक असंदिग्ध संतुष्टि हुई और उससे एहसास हो गया कि यही सर्वशक्तिमान है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जो खुद ही सृष्टि है और सृष्टि का निर्माता भी है। वह विधाता जो गूंजित है हमारी अंतरात्मा में, वही सर्वोपरि है। वाह दोस्तों, कितनी सरलता से इतने कठिन विषय को श्री चिन्मय जी ने इस कहानी के रूप में लाकर हमारी आंखें खोली हैं। असीम अनंत दिव्य आनंद को पाना, जो ब्लिस कहते हैं जिसे, इस स्पिरिचुअल लाइफ में, इस आध्यात्मिक सफर में जिसकी खोज हम सब कर रहे हैं, और उसे पाने के लिए सिर्फ अपने अंतर मन में गोते लगाने की ही ज़रूरत है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे आई। इसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार वापस वापस सुनिए। हर बार ये कहानी सुनने से कुछ न कुछ हमारे अंदर हिलाएगी, हमारे किसी ज्ञान के आवरण को मिटाएगी। दोस्तों, मुझसे कई बार बहुत से कमेंट्स में और ईमेल्स में आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं हिंदी की कहानियों में अंग्रेज़ी के शब्द ला के उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दूँ, नहीं तो कहानी की जो लय है वो टूट जाती है। तो इस कहानी में मैंने वैसा ही किया है, परंतु इस कहानी में कुछ कठिन हिंदी के शब्द हैं, तो अगर आप लोगों को ना पूरी तरह से समझ आए हो और आप चाहते हो मैं इसका सरल व्याख्या करूं, तो प्लीज़ आप मुझे लिख भेजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं पूरी कोशिश करूंगी इस कहानी को सरल भाषा में आपके सामने लेके आने के लिए। दोस्तों, आपको मुझ तक पहुँचने का ज़रिया पता है, मेरे ईमेल एड्रेस पे, चाहे कमेंट्स के थ्रू आप मुझे लिख सकते हैं। आपके विचार सुनने के लिए मैं हमेशा आतुर रहती हूँ। अब आपसे अलविदा लेना चाहती है आपकी होस्ट प्राची। अगली कहानी तक के लिए नमस्कार।